ओम शांति।
ओम शांति।
तो बाबा नए वर्ष पर मुरली चला रहे हैं। यह व्यक्त वर्ष विशेष ब्रह्मा भाव के स्नेह में मना रहे हो, तो स्नेह की निशानी है। स्नेह की निशानी क्या है? समान बनना और न्योछावर, कुर्बान, बलिहार, वारी और समीप रहना, समान बनना, साथ रहना, आज्ञा का पालन करना। आज बाबा ने कहा है कंबाइंड रहना, साथ रहना, मिलन महफिल में रहना, ये सुहागिन की निशानी है। साथ, कंबाइंड, मिलन महफिल और स्नेह की निशानी और भी है, शक्तिशाली बनना। स्नेह की निशानी समान, समीप, कंबाइंड, मिलन महफिल,
उसके
गुणगान गाते रहना। गुणानुवाद, भगवत गुणानुवाद कहा जाता है उसे भक्ति मार्ग में। भगवत प्रशंसा, भगवत स्तुति, भगवत गुणानुवाद। बाबा कह रहे हैं कि स्नेह की निशानी है, जो स्नेही को प्रिय वह स्नेह करने वाले को भी प्रिय हो। जो उसको अच्छा लगे वो हमको अच्छा लगे, उसको ड्रामा अच्छा लगता है तो हमको भी अच्छा लगे, उसको ड्रामा पसंद है तो हमको भी पसंद है, उसको हर एक्टर पसंद है तो उसको हर एक्टर की हर एक्शन पसंद है, उसको हर ड्रामा की हर सीन पसंद है।
जो हमको पसंद हो तो वो उसको पसंद
आना। हाँ, उसका हर बच्चे से प्यार है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों से प्यार ज्यादा और जो ब्राह्मण नहीं है उनसे प्यार कम। दादी प्रकाशमणि के लिए कोई ये कह सकता है कि उसको ब्राह्मणों से प्यार ज्यादा था और जो बाहर की आत्मा है उनके लिए प्यार कम था? कोई ऐसा कह सकता है? सबसे समान प्यार था। तो स्नेह की निशानी है जो स्नेही को प्रिय वह स्नेह करने वाले को भी प्रिय हो। तो ब्रह्मा बाप का स्नेह किससे रहा? मुरली से। सबसे ज्यादा प्यार मुरली से रहा ना, तब तो मुरलीधर बना, भविष्य में भी इसलिए मुरलीधर बना। मुरली से प्यार रहा तो भविष्य श्री कृष्ण रूप में भी मुरली निशानी दिखाते हैं। तो जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार रहना, यह है प्यार की निशानी। सिर्फ कहने वाले नहीं, ब्रह्मा बाप बहुत प्यारा था भी और है भी, लेकिन निशानी जिससे ब्रह्मा बाप का प्यार रहा अब भी है उससे प्यार सदा दिखाई दे, इसको कहेंगे ब्रह्मा बाप के प्यारे। तो ब्रह्मा बाप को सबसे ज्यादा प्यार किससे रहा? मुरली से। ऐसा क्या है इस मुरली में जो उसको इतना प्यार रहा? मुरली में क्या है? 100 बातें बताओ। 100 पॉइंट्स। मुरली में जादू है, मुरली में शक्ति है, मुरली परमात्मा गीत है, परमात्मा आवाज है, परमात्मा बोल है, परमात्मा महावाक्य है, परमात्मा आवाज है, परमात्मा ध्वनि है, परमात्मा स्वर है, परमात्मा संगीत है, परमात्मा सरगम है, परमात्मा सुर है। और क्या है मुरली? मुरली संजीवनी बूटी है, मुरली ज्ञान इंजेक्शन है, मुरली टैबलेट है, सिरप है, कैप्सूल है। मुरली खान है, किस किस चीज की खान है मुरली? सर्व प्राप्तियों की खान, सर्व खजानों की खान, गुणों की खान, रत्नों की खान। मुरली माजून है, मुरली दवाई है। और डॉक्टर मुरली, मुरली क्या है?
क्या बोलती है?
और क्या है मुरली? 100 बातें अभी होने की है। सभी रोगों की दवाई रामबाण औषधि पैनेशिया कहते हैं इंग्लिश में उसे। मुरली जादू बोल दिया, जादू है, चमत्कार है, करामात है, अजूबा है, श्वास है, परमात्मा का लव लेटर है, आशिक का लिखा हुआ प्रेम पत्र है, माशूक का लिखा हुआ प्रेम पत्र है, सद्गुरु का दिया हुआ अध्यादेश। अध्यादेश अर्थात अध्यादेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाबा की मुरलियों में आता है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस मुरली है आदेश, और मुरली है निर्देश, और मुरली है अध्यादेश, मुरली है संदेश, मुरली है परमात्मा संदेश, मुरली है परमात्मा श्रीमत, मुरली है परमात्मा आज्ञाएं, मुरली है परमात्मा भविष्यवाणी, उसमें भविष्यवाणियां आती है। और क्या है मुरली?
प्राणेश्वर का प्राण,
हमारा प्राण है मुरली तो, हमारे प्राणों का प्राण, हमारा प्राण, हमारा ब्राह्मणों का प्राण, ब्राह्मणों का श्वास, ब्राह्मणों के दिल की धड़कन। और क्या है मुरली? हाँ, हर प्रश्नों का जवाब, हर समस्या का हल, क्राइसिस मैनेजमेंट की टेक्निक, प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक, सारे शास्त्रों का सार, सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि, सर्वश्रेष्ठ पुराण, सर्वश्रेष्ठ उपनिषद, सर्वश्रेष्ठ कहानी, सच्चा सच्चा रामायण, सच्चा सच्ची
गीता,
महाभारत, सबसे बड़ा उपनिषद, सबसे बड़ा वैराग्य शतकम, सबसे बड़ी विवेक चुड़ामणि, शंकराचार्य का विवेक चुड़ामणि है, भरत आदि का वैराग्य शतकम है, तो सर्वश्रेष्ठ वैराग्य शतकम ये है, सर्वश्रेष्ठ विवेक चुड़ामणि ये है, योग वशिष्ठ का सर्वश्रेष्ठ धर्मोपनिषद, सर्वश्रेष्ठ उपनिषद क्या है? मुरली है। और क्या है मुरली? मुरली है अमर कथा, सबसे श्रेष्ठ कथा, सबसे रमणीय कथा, सारे शास्त्रों का सार, सारे शास्त्रों का तंत्र, सारे शास्त्रों की समरी, 5000 साल के कहानी की समरी। और क्या है मुरली? मुक्ति, जीवन मुक्ति का द्वार, स्वर्ग का द्वार, मुक्ति, जीवन मुक्ति का द्वार। मुरली वह लाठी है, काठी है, जिसे पकड़ पकड़ कर तुम परम धाम में जाकर फिर सतयुग में आते हो, एक अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। अंधों के लिए लाठी है, और क्या है अंधों के लिए? आईना है, ऐनक, आईना है, और
मुरली बाबा का साथ और हाथ,
मुरली बाप का साथ और बाप का हाथ है, मुरली मुरली है, मुरली वेणु है, मुरली बांसुरी है, और क्या है मुरली? ब्राह्मणी का
भोजन है, ब्राह्मण,
ब्राह्मणों का भोजन है, ब्राह्मणों का आहार है, ब्राह्मणों की खुराक है,
सबसे ऊपर हो गया,
नहीं अभी बहुत बाकी है। और क्या है मुरली? अमृत है मुरली, ज्ञानांजन है मुरली, ज्ञान दूध है, ज्ञान घास है, संजीव बोल दिया, संजीव उठी, घृत है मुरली। और क्या है मुरली? जीवन का सार,
मुरली
क्षमा है, हम परवाह नहीं, क्षमा है, अच्छा। और क्या है मुरली? शस्त्र है, अस्त्र है, बाण है, तीर है, ढाल है, तलवार है, खड़क है, खंजर है। और क्या है मुरली?
बरसात है,
बरसात है, परमात्म वर्षा है, परमात्म बरसात है। और क्या है मुरली? मुरली आदेश निर्देश, उसमें आ जाएगा वो
श्रृंगार,
ब्राह्मणों का श्रृंगार है। आज बाबा ने कहा तुम सब हो सुहागिन, सुहागिन एक शब्द है मुरली में आज, और सुहागवती एक शब्द है, संसार में सुहागन कहते हैं, सुहागन या सुहासिनी कहते हैं, ऐसे चार शब्द है, सुहासिन, सुहासिन, सुहागवती, सुहागिन, सुहागन। तो तुम सुहागन हो, तुम्हारे में टीका है, कंगन है, श्रृंगार है, और खजाने हैं। कंगन, टीका, खजाने, श्रृंगार, ये चार चीजें बाबा ने आज की मुरली में, वैसे जो सुहागिन होती है उसको सिंदूर होता है मांग में, उसे मंगल सूत्र होता है। सुहागिन शब्द का सुहागिन शब्द का अर्थ है वह स्त्री की स्थिति। सुहागिन अर्थात स्त्री की वह स्थिति जिसमें उसका पति जीवंत है और वर्तमान में है, यह है सुहागिन की परिभाषा। तो बाबा ने कहा तुम सब सुहागिन हो। तुम्हारा सुहाग का एक अर्थ है भाग्य, सुहाग का एक दूसरा अर्थ है कि जो शादी के समय पहने जाने वाले वस्त्र है उसे भी सुहाग कहते हैं, सौभाग्य व्यतीत। तो बाबा ने आज दो बातें कही, सुहाग और भाग्य। तो तुम्हारा सौभाग्य सुहाग है और भाग्य है, और तुम श्रृंगारी हो। जो श्रृंगारे नहीं है, जो बाप से कंबाइंड नहीं है, उसके लिए बाबा ने कहा वो वियोगी है, वो वियोगी है, और वो क्या है, भिखारी है, भिखारी और विराग वियोगी। भाग्य चार प्रकार के, पांच प्रकार के भाग्य भी बता दिए मंजू बहन। कौन से पांच प्रकार के भाग्य अभी अभी आप पढ़ के आए हो? याद नहीं आता। तन का भाग्य, मन का भाग्य, धन का भाग्य, संपर्क का भाग्य, संबंध का भाग्य। तन से सदा तंदुरुस्त, स्वस्थ, स्व की स्थिति में स्थित स्व तन। मन सदा खुश, मन मना भव। तन मन धन ज्ञान धन से संपन्न, संबंध सर्व संबंध एक के साथ, और संपर्क बगुलों के साथ संपर्क है परंतु केवल सेवा अर्थ। तो ये चार पांचों भाग्य तुम्हारे साथ है, और सुहाग है वो भी अविनाशी सुहाग। पार्वतिया है ना, सुहाग से वंचित नहीं, सुहाग से वंचित है तो वियोगी भिखारी। तो मुरली और क्या है, बारूद है। मुरली परमात्म बॉम्ब है, आत्मिक बॉम्ब और परमात्म बॉम्ब है। और क्या है मुरली,
लोरी है,
लोरी है वह लोरी। हाँ, सुपर मार्केट है मुरली। बाबा ने एक अव्यक्त वाणी, विदेशियों से मुलाकात 86 शायद, उसमें कहा है कि विदेशियों से बात करती हो कि विदेशियों को सुपर मार्केट ज्यादा पसंद होता है। मार्केट ऐसी जगह जाते हैं जहाँ सब चीजें एक ही साथ मिल जाए। और मुरली क्या है, मुरली घासलेट, क्या करोगे इससे? अच्छा, जंग छुड़ाने के लिए घासलेट। ओ और क्या है मुरली, चाणक्य ने क्या लिखा है, चाणक्य क्या क्या लिखा है, नीति शास्त्र। यह है परमात्म नीति, परमात्म नीति शास्त्र सर्वश्रेष्ठ शास्त्र, इकोनॉमिक्स का सर्वश्रेष्ठ शास्त्र। मुरली क्या है, इतिहास है, हिस्ट्री है,
देवी देवता धर्म की स्थापना
कुछ होगा, वो तो शास्त्र बोल दिया हमने। तो मुरली इतिहास है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री की किताब है, सर्वश्रेष्ठ हिस्ट्री की बुक, सर्वश्रेष्ठ भूगोल की किताब है इतिहास, सर्वश्रेष्ठ नीति तो बोल दिया। और क्या है, रिद्धि सिद्धि की खान है, वहां पर तांत्रिक जो लोग होते हैं उनके पास किताबें होती है, उसमें जादू टोने होते हैं। यह भी इसमें भी सब रिद्धि सिद्धि की किताब है, इसमें बहुत सारे प्रयोग है, ये करो तो वो मिल जाएगा, ये करो तो वैसा मिल जाएगा। मास्टर सर्वशक्तिमान के समान में स्थित हो जाओ तो सारी शक्तियां आ जाएगी। मास्टर ज्ञान सूर्य के समान में स्थित हो जाओ तो वातावरण परिवर्तन हो जाएगा। और क्या है मुरली, मुरली ज्ञान है, ज्ञान है, विज्ञान है, ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, और क्या है, धूप है। आपने बोला नहीं पर कुछ, आप मुरली हो। मुरली मुरली जो कृष्ण की मुरली थी उसमें, मुरली में 9 छेद होते हैं, उसमें सात जो छेद है वो 7 स्वर का प्रतीक है। जो 7 स्वर है वो आयुर्वेद की रचना भी 7 स्वरों से हुई है, सा रे ग इसका होता है वात, ग म प कफ, ध म प ध, सारे ग म प ध निसा, तो वात कफ और पित्त। ये आयुर्वेद की रचना भी इसके आधार से है। 9 अर्थात नवग्रह भी आते हैं उसमें, 9 द्वार जो है शरीर के वो भी उसकी वजह से। तो ये जो गोपियां आकर्षित हो जाती थी, वो गोपियां इंद्रियों का प्रतीक है, इंद्रियां वश में हो जाती थी। गोपियों को क्या हो जाता था मुरली से, वो तो बोला ही नहीं, देहभान सुदबुद्ध भूल जाती थी, अतीन्द्रिय सुख में डोलने लगती थी। आज की मुरली में पार्टियों से मुलाकात, सेकंड पैराग्राफ, अतीन्द्रिय सुख के झूला। और क्या हो जाता था गोपियों को? काम धाम भूल जाती थी अपने कृष्ण को, क्या करती थी? प्यार से थी नहीं कृष्ण, उनके वजह से कृष्ण को नहीं, कृष्ण के मुरली की वजह से उनको क्या हो जाता? जड़ और चेतन दोनों ही स्थिर हो जाते, दोनों ही मुग्ध हो जाते थे। अब आकाश में उड़ने वाले विमान पर जो देवता थे वो रुक जाते थे, पशु पक्षी सब कुछ मुग्ध, मंत्र मुग्ध हो जाते थे, विमोहित हो जाते थे उसकी मुरली सुनकर। तो मुरली का असर केवल चेतन पर नहीं, जड़ पर भी है, प्रकृति भी सत्प्रधान बन जाती है। तो कहां थे हम? मुरली से प्यार, मुरली से प्यार तो है ना सबको। हाँ, क्योंकि कुछ भी अगर फ्रैक्चर अगर कुछ हुआ तो मुरली से प्यार जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर मुरली फिर मुरली को बंसी भी कहते हैं, मुरली को वेणु भी कहते हैं, मुरली को बांसुरी भी कहते हैं, अलग अलग नाम है, फ्लूट मुरली थर। सौ तो हो गए ना, ज्यादा हो गए। मुरली मन रस है, कन रस भी है, रसों का सार है, सप्तरंगी है, बहुरंगी है। सबसे ज्यादा प्यार मुरली से रहा ना, तब तो मुरलीधर बना, भविष्य में भी इसलिए मुरलीधर बना। मुरली से प्यार रहा तो भविष्य श्री कृष्ण रूप में भी मुरली निशानी दिखाते हैं। तो जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार रहना, यह है प्यार की निशानी। सिर्फ कहने वाले नहीं, ब्रह्मा बाप बहुत प्यारा था और है भी, लेकिन निशानी जिससे ब्रह्मा बाप का प्यार रहा अब भी है उससे प्यार सदा दिखाई दे, इसको कहेंगे ब्रह्मा बाप से प्यार। नहीं तो कहेंगे नंबरवार प्यारे, नंबर वन नहीं कहेंगे, नंबरवार कहेंगे। अव्यक्त वर्ष का लक्ष्य है बाप के प्यार की निशानियां प्रैक्टिकल में दिखाना, यही मनाना है। जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो बाप समान बनना, आज भी मुरली में कहा है बाप समान, जो समीप है वो समान है, लास्ट पार्टी। जो भी कर्म करो विशेष अंडरलाइन करो कि कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि यह ब्रह्मा बाप समान है, यह प्यार की निशानी है। सिर्फ संकल्प को स्वरूप में लाओ, बोल को मुख से बोलो, कर्म को कर्मेंद्रियों से करो, पहले चेक करो फिर प्रैक्टिकल करो। ऐसे नहीं कि सोचा तो नहीं था लेकिन हो गया, नहीं। ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही रही, जो सोचा वह किया, जो कहा वह किया। तो सोचना बोलना और करना समान, यह ज्ञानी तो आत्मा की निशानी है, समर्थ आत्मा की निशानी है। चाहे नया ज्ञान होने के कारण अपोजिशन कितनी भी रही, लेकिन अपने स्वमान की स्मृति से, बाप के साथ की समर्थि से और दृढ़ता निश्चय के शस्त्र से, शक्ति से अपनी पोजीशन की सीट पर सदा अचल अटल रहे। बारह बार जो हाथ उठाया उसमें से एक हाथ उठाया बाबा ने, अपनी संपूर्णता की सीट को नहीं छोड़ना है। यह हाथ उठवाए ना एक, चाहे कुछ भी हो जाए, सूरज भाई ने कहा ना उस दिन, पर ये उनके लिए है जो संपूर्णता की सीट पर है। और जिन्होंने अभी संपूर्णता की सीट को पकड़ा नहीं है पहले तो वो पकड़े, और जिन्होंने पकड़ लिया है वो इस सीट को ना छोड़े। ये है होमवर्क, इस बार बाबा ने हाथ उठवाया है, उसमें बहुत सारी परिभाषा आ जाएगी। केवल बाप को पकड़े तो हजारों आत्मा है, पर वो संपूर्ण थोड़ी बने हैं। तो संपूर्णता की सीट को पकड़ना, आज भी बाबा ने कहा अगर जो गुण नहीं है वो तो चेक करो कि गुण को लाओ, जहां संपूर्णता नहीं है वहां संपूर्णता लाओ, दादियों से मुलाकात। तो जहां पोजीशन है वहां अपोजिशन क्या करेगा? अपोजिशन पोजीशन को क्या कर देता है? वो तो है, बाबा ने नई बात कही है यहाँ। अपोजिशन पोजीशन को दृढ़ बनाती है, जितना विरोध होता है उतना ही हम और शक्तिशाली बनते और सिद्धि हो जाते। आग्रह जिद का रूप धारण कर लेता है। कोई भी नई बात होती है तो उसमें तीन अवस्थाओं से हो जाती है। सबसे पहली अवस्था है उपहास, लोग निंदा करते, दूसरी अवस्था होती है विरोध करते हैं, और तीसरी अवस्था होती है स्वीकृति, ऐसा विवेकानंद ने कहा है। स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, सबसे पहले निंदा। जैसे ब्रह्मा कुमारी संस्था की स्थापना हुई तो सबसे पहले उपहास, निंदा, उसके बाद में विरोध, और फिर लास्ट में अभी क्या हो रहा है, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। तो कोई भी नई चीज आप करोगे तो लोग उपहास करेंगे, निंदा करेंगे, ज्यादा योग लगाने जाओगे तो भी निंदा करेंगे, क्या कहेंगे, इनके शायद पाप ज्यादा है इसके लिए ज्यादा योग लगाते हैं, ऐसे भी बोलेंगे। तो कोई भी नई चीज अगर करने जाओ तो सबसे पहले उपहास, फिर विरोध करते, और फिर लास्ट में स्वीकृति करते। तो बाबा यहाँ कह रहे अपोजिशन, पोजिशन को दृढ़ बनाती है, हिलाती नहीं और ही दृढ़ बनाती है, जिसका प्रैक्टिकल विजयी बनने का सबूत स्वयं आप हो और साथ साथ चारों ओर की सेवा का सबूत है। तो पहले जो पहले कहते थे ना कि ये धमाल करने वाले, वो आप क्या कहते हैं, कमाल करने वाले। तो यह कैसे हुआ, अपोजिशन को श्रेष्ठ पोजिशन से समाप्त कर दिया ना, तो अपोजिशन हुआ परंतु हम स्थिर थे। तो अब इस वर्ष में क्या करेंगे, जैसे ब्रह्मा बाप ने निश्चय के आधार पर, रूहानी नशे के आधार पर निश्चित भावी के ज्ञाता बन सेकंड में सब सफल कर दिया, अपने लिए नहीं रखा सफल किया है, जिसका प्रत्यक्ष सबूत देखा कि अंतिम दिन तक तन से क्या किया बाबा ने, पत्र व्यवहार द्वारा सेवा की, मुख से महावाक्य उच्चारण किए, अंतिम दिवस भी समय संकल्प शरीर को सफल किया। तो स्नेह की निशानी क्या है यहाँ, सफल करना, सफल करने का अर्थ ही है श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो जब सफलता का लक्ष्य रखेंगे तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा, जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। अगर यही सोचते रहे कि अंधकार को निकालो तो टाइम भी वेस्ट, मेहनत भी वेस्ट। ऐसी मेहनत नहीं करो, आज क्रोध आया कल लोभ आया, आज व्यर्थ सुन लिया बोल दिया आज व्यर्थ हो गया, इसको सोचते सोचते मेहनत करते दिल शिकस्त हो जाएंगे। लेकिन सफल करना है मतलब श्रेष्ठ तरफ लगाना है, यूटिलाइज इन वर्थ वाइल वे, इस लक्ष्य से व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यह सफल करने का लक्ष्य रखना माना रोशनी करना, तो अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाएगा। अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, अंधकार क्या है, प्रकाश का अभाव। समझा अव्यक्त वर्ष में क्या करना है, बाप दादा भी देखेंगे कि नंबर वन प्यारे बनते हैं या नंबर वार प्यारे बनते हैं। सभी नंबर वन बनेंगे, डबल विदेशी क्या बनेंगे, नंबर वन बनेंगे। नंबर वन कहना बहुत सहज है, लेकिन लक्ष्य दृढ़ है तो लक्षण अवश्य आते हैं। लक्ष्य बहुत ऊंचा हो, दृढ़ हो, तो लक्षण स्वतः ही आएंगे। ये वाक्य देखो कितना अच्छा है, लक्ष्य लक्षण को खींचता है, लक्ष्य लक्षण को खींचता है, पर पहले लक्ष्य रखना पड़ेगा। आज सारे दिन भर का लक्ष्य, एक हफ्ते का लक्ष्य, एक महीने का लक्ष्य, छह मास का लक्ष्य, कुछ तो लक्ष्य रखना पड़ेगा, टारगेट, तो ही लक्षण आएंगे। अब आपस में प्लान बनाना, सोचना, प्लान बनाओ और फिर उसको प्रैक्टिकल में लाओ। बाप दादा खुश है, अगर सब नंबर वन बन जाए तो बहुत खुश है, सभी नंबर वन हो जाए तो बाबा ऊपर से फूलों की वर्षा कर देंगे। फर्स्ट डिवीजन तो लंबा चौड़ा है, वन बन सकते हो, फर्स्ट डिवीजन में सब फर्स्ट होते हैं, तो नए वर्ष की यह मुबारक हो कि सभी नंबर वन बनेंगे। और एक आगे अभी बाबा कह रहे हैं, व्यर्थ पर विन करेंगे तो वन आएंगे, व्यर्थ पर विन नहीं करेंगे तो वन नहीं बनेंगे। अभी भी व्यर्थ का खाता, किसका संकल्प में, किसका बोल में, किसका संबंध संपर्क में, अभी पूरा खाता खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कभी कभी निकल आता है, लेकिन लक्ष्य अपनी मंजिल को अवश्य प्राप्त कराता है। व्यर्थ को स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए, जब स्टॉप करने की शक्ति आएगी तो जो भी पुराने खाते का स्टॉक है वह खत्म हो जाएगा। इतनी शक्ति है, परमात्मा सिद्धि है। रिद्धि सिद्धि वाले अल्पकाल का चमत्कार दिखाते हो और आप परमात्मा सिद्धि वाले क्या करते हो, विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करते हो। परमात्मा सिद्धि क्या नहीं कर सकती, स्टॉप सोचा और स्टॉप हुआ, इतनी शक्ति है। यह स्टॉप कहने के बाद भी एक दो दिन भी लग जाते हैं तो एक घंटा दस घंटे भी लग जाते हैं, स्टॉप तो स्टॉप, तो यही निशानी बाप को देना। समझा, समझा, थोड़ा थोड़ा समझा, समझ रहा है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, अव्यक्त वर्ष में विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह में मना रहे हो। तो स्नेह की निशानी है, जो स्नेही को प्रिय है वो हमें भी प्रिय हो। तो ब्रह्मा बाप को प्रिय है मुरली, तो मुरली हमें भी प्रिय हो। और यहाँ पर क्या कहा फिर, अपोजिशन और पोजिशन। अगर हम अपने पोजिशन में दृढ़ रहते हैं तो पोजिशन अपोजिशन समाप्त हो जाता है, वो और ही हमारी पोजिशन दृढ़ होती जाएगी। आगे क्या कहा, सफल करने के लिए कहा, हर चीज सफल करो, श्रेष्ठ तरफ लगा देना, अर्थात सफल करना, हर चीज श्रेष्ठ तरफ लगा देना। और लास्ट में क्या कहा कि व्यर्थ को स्टॉप कहा तो स्टॉप, क्योंकि हमारे पास क्या है, परमात्मा सिद्धि है, यही एक चमत्कार है। वो लोग तो करते हैं, कभी बाबा ने कहा वो लोग हाथ की सफाई करते हो, तुम क्या करते हो, बुद्धि की सफाई करते हो। तो ये था मुरली के बारे में। अच्छा, शांति।